ओम शांति। आज बाबा के सवेरे के मधुर महावाक्य हम सभी ने सुने, जिसमें बाबा ने सच्चे ब्राह्मण की निशानियां बताई। और उसमें एक निशानी बाबा की ये थी कि सच्चा ब्राह्मण कर्मयोगी होता है। सच्चा ब्राह्मण जब कर्मयोगी है, अर्थात कर्म हमें छोड़ना नहीं है, ब्राह्मणों के लिए कर्म अनिवार्य है, हमें कर्म सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन कर्म योगी बाबा ने बनाया है। और इसीलिए जब हम है ही कर्म योगी, तो वो कर्म हमें कैसे करना है। तो आज की मुरली में ही बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई कि ब्राह्मण देवताओं से भी श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों की पूजा नहीं होती है, देवताओं की पूजा होती है। जब ब्राह्मण श्रेष्ठ है देवताओं से भी, तो खाली गायन योग्य बनता है, पूजन योग्य क्यों नहीं बनता है? उसका कारण बाबा ने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि ब्राह्मण पवित्र है, इसलिए शरीर से पवित्र नहीं है, इसलिए नहीं। फिर श्रेष्ठ कैसे हुआ? देवताओं से भी श्रेष्ठ है ब्राह्मण। ब्राह्मण बनने बिगर, जो कारण बाबा ने बताया, ब्राह्मण है नॉलेजफुल, और इसलिए उसके हर कर्म में नॉलेज समाई हुई हो। कर्म योगी बनने का आधार ही है कि जिस कर्म में अगर नॉलेज शामिल न हो, ज्ञान युक्त अगर हमारे कर्म न हो, तो हम कर्म योगी कैसे हुए? तो इसीलिए बाबा ने कहा ये देवताओं से भी श्रेष्ठ है, और इसीलिए वो गायन योग्य भी है, महिमा योग्य भी है, क्योंकि हमारा हर कर्म जब ज्ञान युक्त है, जिसमें ज्ञान समाया हुआ हो, ज्ञान के जो लॉज है, उस लॉज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जहां हो, उसको कहेंगे सच्चा ब्राह्मण। फिर बाबा ने एक और गुह्य बात सुनाई। कई बच्चे बाबा को कहते हैं कि बाबा झूठ बोलना पड़ता है, बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है, तो क्या करें? तो बाबा ने एक बहुत गहरी बात सुनाई कि बाबा नर्व्स देखकर राय देते हैं। अगर बाबा बच्चे को राय दे कि तुम सत्य बाप का बच्चा है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, सत्य ही बोलना है, और बच्चा न कर सका, तो नाफरमान वरदार का बोझ, वो पाप का बोझ उसके ऊपर चढ़ जाए। इसलिए बाबा नर्व्स देखता है कि बच्चा कितना कर सकता है और उस अनुसार राय देता है। कईयों को बाबा कहते हैं, है ना, कई बार मुरलियों में आपने सुना कि कई बाबा को कहते हैं, बाबा मुझे बाहर खाना पड़ता है, तो बाबा कहते भले खाओ। क्यों? क्योंकि बाबा जानता है ये बच्चा नहीं कर सकता है, लेकिन जो कर सकता है, जिसके अंदर क्षमता है, उसको बाबा राय देता है कि नहीं बच्चे, तुम्हें कोई भी हालत में कुछ भी हो जाए नहीं करना है। तो इसीलिए बाबा कहे, कई बार ब्राह्मण भी फिर इतने नॉलेजफुल बन जाते हैं कि बाबा ने तो कहा है ना याद करके खा लो, लेकिन ये बात बाबा ने किसके लिए कहा, जो कमजोर है, जो नहीं कर सकता है उसके लिए बाबा ने कहा। तो आप अगर याद करके ही खा लेने वाले हैं तो आप तो क्या हुआ, उससे भी गए, उससे भी कमजोर हो गए। तो बाबा ने कोई राय किसको कैसी दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से मरोड़ दे, उसको नॉलेजफुल नहीं कहा जाता है। नॉलेजफुल माना हर लॉज को समझते हुए, कर्म के हिसाब किताब को समझते हुए, जो कर्म करता है वो कर्म योगी है। अगर कार्मिक अकाउंट्स को ही नहीं समझा जिसने, तो उसको कर्म योगी कहेंगे क्या? और अगर वो कर्म योगी ही नहीं है तो कर्मातीत कहां से बनेगा? कर्मातीत तो बहुत दूर की बात है, पहले कर्म योगी तो यथार्थ रूप में बने। तो इसीलिए आज बाबा ने बात बोली, हर आत्मा का हिसाब किताब अपना है, लेकिन जो हिसाब किताब को समझते हुए उस कार्मिक लॉज को फॉलो करता है, कर्म के जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को यथार्थ समझ करके उसको अप्लाई करता है, उसको कहा जाता कर्मयोगी। आज की मुरली में इसीलिए बाबा ने जब सच्चे ब्राह्मणों की डेफिनेशन बताई तो बहुत गुह्य बातें उसमें स्पष्ट की आज की मुरली में, कि यथार्थ कर्मयोगी बनना, जिसके पास आदि मध्यंत का ज्ञान है उसको समझते हुए कर्म करना, ये यथार्थ कर्मयोगी। और ऐसा यथार्थ कर्म योगी ही तो कर्मातीत बनेगा, उसके लिए सहज हो जाएगा कर्मातीत बनना, है ना? तो कर्म योगी बनने के लिए कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना है, जो बाबा की नित्य मुरली में भी बार बार अटेंशन खिंचवाता है बाबा हमारी। जैसे कल की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि कोई कच्चे ब्राह्मण है, कोई पक्के ब्राह्मण है। कच्चे क्यों है और पक्के क्यों है? जो कच्चे हैं वो कच्चे क्यों है? तो कल बाबा ने ये बात कही, कच्चे इसलिए देह अभिमान में आ जाते हैं, बार बार जो देह अभिमान के वश हो जाते हैं वो कच्चे हो गए, और जो देही अभिमानी बन करके रहते हैं, चलते हैं, वो अभ्यास करते हैं, वो पक्के ब्राह्मण हो जाते हैं। तो इसीलिए कर्म योगी बनने की सबसे पहली बात है देही अभिमानी होकर के हर कर्म करना। जहां देह अभिमान के वश हुए वहां वो कच्चा ब्राह्मण हो गया, है ना? वो कर्मयोगी भी नहीं है, कर्मयोगी तो है ही नहीं, ब्राह्मण भी कच्चा हो गया। तो इसीलिए बाबा कहे, सबसे पहली क्राइटेरिया अगर है कर्मयोगी की तो देही अभिमानी होकर कर्म करना। दूसरा बाबा ने कहा कि कर्म योगी बनने के लिए, श्रेष्ठ कर्म योगी बनने के लिए श्रेष्ठ स्वमानधारी जो रहता है, श्रेष्ठ स्वमान, बाबा की एक अव्यक्त मुरली हम पढ़ रहे थे, रेगुलर में चल रही है, तो एक 2003 की मुरली बाबा की अभ्यास कर रहे थे, सुन रहे थे, तो उसमें बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ स्वमान ये शुद्ध अभिमान है। देह अभिमान अलग है, लेकिन श्रेष्ठ स्वमान के स्वरूप में स्थित हो जाना, ये शुद्ध अभिमान में बच्चों को रहना चाहिए। तो इसीलिए श्रेष्ठ स्वमान का साक्षात स्वरूप बनना, एक है स्वमान को रिपीट करना, स्मृति में रखना, और एक है स्वमान का स्वरूप बनना। तो जो स्वरूप बनता है वो कर्मयोगी है, वो कर्मातीत की ओर बहुत फास्ट अग्रसर हो सकता है, तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है। परंतु जो खाली स्मृति में रखता है कि हाँ आज का स्वमान ये है, तो स्वमान को खाली स्मृति में रखने से कर्म योगी नहीं बन सकता है। लेकिन जो उसका साक्षात स्वरूप बनता है, उस स्वरूप में स्थित होकर के कर्म में आता है, ये यथार्थ कर्म योगी है। तीसरी बात, कर्म योगी हर समय हर कर्म का श्रेय बाबा को देता है, क्योंकि नेचुरल है जो ऐसे कर्म योगी बन करके कर्म करेगा उसके कर्म में कोई त्रुटि नहीं होगी, वो कर्म बहुत सुंदर होगा। और स्वाभाविक है, जैसे आज बाबा ने कहा गायन योग्य बनता है, कि उसकी महिमा हर कोई कहेगा करेगा, वह बहुत अच्छा किया आपने। सिंपल सा उदाहरण के अगर बाबा की याद में हम कोई भी भाषण करते हैं, किसी को ज्ञान सुनाते हैं, समझाते हैं, तो बहुत अच्छा ही समझाएंगे। जैसे आज बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा कहते मैं बहुत अच्छा समझा सकता हूं, है ना, ये नहीं कि नहीं समझा, लेकिन हर समय वो श्रेय किसको देता है, यही समझो शिव बाबा समझाता है। तो इसी तरह कर्म योगी के हर कर्म इतने सुंदर और इतना रिफाइन होगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, लेकिन जब कोई महिमा गाता है या गायन करता है बहुत अच्छा किया, तो उस वक्त क्या करेगा, करण करावन हर बाबा है, बाबा करा रहा है, तो उसके अंदर हमेशा वो श्रेय बाबा को देता है। इसीलिए खाता जमा हो जाता है उसका, और वो जो जमा हो गया खाता, वो उसको हर समय उन्नति की ओर आगे बढ़ाता है। उसमें बाबा की भी उसको स्वतः दुआ प्राप्त होती है, जिसने श्रेय बाबा को दिया हो तो नेचुरल है वो खाता कितना जमा होगा, वो भगवान की भी दुआएं उसके ऊपर रहेगी, तो उसकी उन्नति कैसे होगी, बहुत सहज सरल फास्ट, है ना, तीव्र गति से उसकी उन्नति होने लगेगी। तो ये हुआ स्वमान, देही अभिमानी स्थिति, और करण करावन हर बाबा करा रहा है। तो कोई भी कर्म में ये तीन बातें हमें बहुत ध्यान रखनी है, एक तो देही अभिमानी स्थिति, स्वमान का स्वरूप बनना, और करण करावन हर बाबा करा रहा है, ये हमेशा ख्याल रखना, तो नेचुरल कर्म योगी स्थिति हमारी हो जाएगी। दूसरी बात, दूसरा पहलू लेते हैं अभी, कि जब हम कर्म योगी बनते हैं, अर्थात कर्मेंद्रिय का प्रयोग होता है, तो जिस कर्मेंद्रिय का प्रयोग करते हैं, तो कर्म संबंध में आकर के कर्म कर्मेंद्रिय का प्रयोग करना, कर्म संबंध में आकर के एक प्रयोग करना माना, ये कर्मेंद्रिय को सुख देना, आराम देना, उसके बजाय उसका सुख और आराम सेवा में है। दूसरों को सुख देना, जब दूसरों को सुख देने की भावना है और वो कर्मेंद्रिय का प्रयोग किया गया, वो यथार्थ कर्मयोगी है। जहां खुद के इंद्रियों को सुख मिले उसके लिए प्रयोग किया तो वह कर्मयोगी नहीं बना, ये बंधन क्रिएट करता है, बंधन क्रिएट करता है। लेकिन इन कर्मेंद्रिय का प्रयोग दूसरों को सुख देने में अगर लगाया तो वह पुण्य का खाता जमा करता है और हमें यथार्थ कर्मयोगी बनाता है। दूसरी बात कि ये कर्मेंद्रिय का जब प्रयोग करते हैं तो अनासक्त भाव से प्रयोग करना। बार बार गीता के अंदर कर्म योग एक बहुत बड़ा विषय बताया गया है गीता में, उसमें भी बार बार जो कहा अनासक्त भाव हो करके इन कर्मेंद्रिय का प्रयोग करना। क्योंकि अधिकतर मनुष्य दुनिया के अंदर जब कर्मेंद्रिय का प्रयोग करते हैं तो आसक्ति भाव से करते हैं, ये अच्छा लगा इसीलिए ये करना है। तो जहां आसक्ति भाव है वहां वो बंधन बनता है, वो कर्म हमें बांधेगा। लेकिन जहां अनासक्त भाव से उसका प्रयोग किया गया, उन कर्मेंद्रिय का, वो हमें बंधनों से मुक्त करने वाला बन जाता है ना। इसलिए अनासक्त भाव चाहिए। तीसरी बात, एक है स्वार्थ भाव और एक है सेवा भाव। तो कर्म योगी सेवा भाव से प्रयोग करता है, स्वार्थवश नहीं प्रयोग करता। इंद्रियों का प्रयोग जो है वो भी स्वार्थवश नहीं, सेवा भाव वश, है ना, दूसरों को सुख मिले। और चौथी बात कि वो दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी को भी उसमें स्वाहा कर देगा। अर्थात ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ के अंदर उसको स्वाहा कर देने वाला, कि जहां हम हर पल यही सोचे कि बाबा के यज्ञ की जब सेवा करते हैं तो हड्डी हड्डी पावन बन रही है। इसीलिए कहा कि उसको सुख देने के भाव से नहीं, औरों को सुख मिले उसका। और जब इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं तो ये हड्डी हड्डी पावन बनती है। यही एक प्रकार की सच्ची तपस्या हो जाती है। ये दूसरा पहलू। तीसरा पहलू कि कर्म योगी बनने के लिए बाबा का हाथ पकड़कर चलो, यथार्थ कर्म योगी बन जाएंगे। बाबा का हाथ पकड़कर चलना माना श्रीमत रूपी हाथ को पकड़ करके चलना। हर समय श्रीमत, बाबा ने आज मुरली में बार बार ये बात कही कि तुम श्रीमत के आधार पर, बाप की मत के आधार पर स्वर्ग स्थापन करते हो। तो जो श्रीमत के आधार पर हर कर्म होता है, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक, हर श्रीमत को मीटर के रूप में सामने रखते हुए ये यथार्थ है या अयथार्थ है। इस विधि से जो कर्म करते हैं श्रीमत अनुकूल, ये हमें यथार्थ कर्म योगी बनाता है। जहां थोड़ा भी श्रीमत को अगर तोड़ मरोड़ कर लिया ये भी चलता है, ऐसा भी चलता है, ये भी हो सकता है, ये भी। तो बाबा कहे कि जहां श्रीमत को तोड़ मरोड़ कर लिया तो वो कर्म योगी नहीं, और अगर कर्म योगी नहीं तो कर्म भोगी बनना पड़ता है। अर्थात श्रीमत एक बोझ अनुभव कराता है, अगर श्रीमत के विपरीत कर्म हुआ तो नेचुरल है वो भोगना का अनुभव जरूर कराएगा। इसीलिए बाबा कहे श्रीमत का हाथ पकड़ करके सदा चलते चलो, हर कर्म करते रहो, तो वो कर्म में बल भरेगा। और श्रेष्ठ कर्म का बल बहुत आवश्यक है। अगर श्रेष्ठ कर्म का बल नहीं है तो कर्म योग ही नहीं, और कर्म योग नहीं तो कर्म भोग है। जैसे बाबा ने अपना अनुभव लास्ट में बताया कि जब बच्चों ने पूछा कि बाबा आपकी लास्ट की स्थिति क्या थी, तो बाबा ने कहा कर्म योग और कर्म भोग की लड़ाई चल रही थी। कर्म भोग दर्द पहुंचाना चाहता था, दर्द का अनुभव कराना चाहता था, लेकिन कर्म योग की शक्ति ने उस दर्द को अनुभव होने नहीं दिया और कर्म भोग के हाथ पैर ढीले हो गए। और इस तरह से कर्म योग की विजय कर्म भोग के ऊपर हो गई। तो श्रीमत का हाथ जहां होगा, अच्छा कैसे पता चले कि हम श्रीमत के आधार पर कर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रमाण क्या? हाँ, खुशी रहेगी और हाँ हल्कापन रहेगा और थकावट नहीं होगी और हाँ दुविधा नहीं होगी, दुविधा नहीं होगी। और श्रीमत के आधार पर कर्म है तो सबसे पहला जैसे कहा खुशी है, या जिसको कहा जाए आत्मसंतुष्टि है, उस कर्म करने के बाद एक संतोष प्राप्त होता है। दूसरा जैसे कहा कि कर्म बंधन नहीं होता तो वो हल्कापन का अनुभव कराता है। तीसरा उसमें दूसरों की भी दुआएं प्राप्त होती है। अगर दूसरों की दुआएं नहीं है इसका मतलब वो श्रीमत विरुद्ध कर्म है। जहां दुआएं हैं हर एक आत्मा की भी खुशी है, माना यथार्थ कर्म योगी है हम। और चौथी बात कि उड़ती कला में जाने का आधार है, कि योग में बैठने के बाद ये शिकायत नहीं रहती है कि हमारा योग नहीं लगता है, क्या करें, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद कहीं मन जाके टिकता है, नहीं। सहज नेचुरल योगी, इसलिए बाबा की एक मुरली याद आती है कि बाबा ने कहा कि योग लगाने वाले योगी नहीं बनो, योगी जीवन वाले योगी बनो, जीवन ही योगी हो। भाई 2 घंटा मैंने योग लगाया तो बाकी 20 घंटा 22 घंटा क्या किया, वे योगी रहे? आज का चार्ट मेरा 2 घंटे का है, 4 घंटे का है, तो बाकी समय 20 घंटा किस में रहे? हम है ही नेचुरल योगी जीवन वाले, योग लगाने वाले नहीं। अर्थात हर कदम हमारा श्रीमत अनुकूल हो, नेचुरल बाबा की याद जिसमें समय हुई हो, ये योगी जीवन है। तो इसीलिए कहा एक योगी जीवन का अनुभव, उठते बैठते चलते फिरते योगी ही स्थिति है, योग की स्थिति है। बहुत अच्छा महसूस होता था जब प्रकाशमणि दादी होते थे यहाँ पर। हमने कभी दादी को अमृत वेले के सिवाय और कोई समय खास जाकर के बाबा के कमरे में बैठे हो ऐसे कभी नहीं देखा। लेकिन बाबा के साथ की जो लाइन क्लियर थी इतनी कि बाबा क्या कह रहा है, दादी जैसे स्पष्ट अमृत वेले में भी कैच कर लेती थी, दिन के समय में भी। मुझे याद आता है कि एक बार दादी को कहीं जाना था, बहुत धूमधाम से बाबा मतलब प्रोग्राम बनाया हुआ था, और जब दादी बाबा के कमरे से छुट्टी लेकर के ही जाती थी हमेशा, तो उस समय दादी बाबा के कमरे में जाती थी। तो जैसे ही बाबा के कमरे में गई और बाबा से दृष्टि ले रहे थे, छुट्टी ले रहे थे, और दादी को इतनी स्पष्ट कैचिंग हुई, नहीं जाना है, बाबा मना कर रहा है, बाबा ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा है। बाहर आकर के आंगन में दादी ने सारा सामान पैक हो गया है गाड़ी में, और बाबा ने ग्रीन झंडी नहीं दिया है, और नहीं दिया है इतनी स्पष्ट कैचिंग, क्या कहे, कोई कुछ नहीं कह सकता था। सब शांत होकर के देखते रहे, दादी ने कहा नहीं, सामान उतारो, और दादी की जगह किसी और दादी को भेज, शायद मनोहर दादी को भेज दिया कि आप चली जाओ, मुझे बाबा ग्रीन झंडी नहीं दे रहा है। और मनोहर दादी को भेज दिया या रतनमयी दादी को भेज दिया कि आप चले जाओ वहां पर, उनका बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन बाबा ने मुझे सिग्नल नहीं दिया है। और सचमुच उसके बाद पता चला कि मना क्या प्रॉब्लम थी, मुझे अभी तो स्पष्ट इतना याद नहीं है, खाली ये घटना याद है कि बाद में पता चला कि हाँ, दादी को बाबा ने क्यों झंडी नहीं दिखाई। बहुत कुछ बड़ा यहाँ होने वाला था या रास्ते में या जिस भी तरीके से, वो तो बाबा की बहुत क्लियर टचिंग होती थी। ये नेचुरल योगी जीवन, इसको कहा जाता नेचुरल योगी जीवन, कि जहाँ हर समय बाबा के साथ लिंक इतनी क्लियर हो कि बाबा की हर एक बात को बहुत स्पष्ट रीति से कैच करना, और जब जैसे ही कैच किया और उसको पालन किया, बाद में पता चला हाँ ये प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कुछ, और उसके लिए बाबा ने मना किया था। तो ये होता है योगी जीवन का, कि क्योंकि दादी इतना एक्यूरेट श्रीमत को पालन करती रही, कदम कदम जैसे श्रीमत के विरुद्ध कोई काम नहीं, हर एक की संतुष्टि जिसमें समाई हुई है, खुद की संतुष्टि भी तो सबकी संतुष्टि भी जिसमें है, सबकी खुशी है जिसमें, तो नेचुरल है कि हर एक की दुआएं भी साथ में जमा होती है, तो हल्कापन है, तो बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर है। तो श्रीमत अर्थात जो श्रेष्ठ कर्म का बल अनुभव होना हर पल, और उस श्रेष्ठ कर्म के बल से बड़े विघ्नों को समाप्त कर सकते हैं सहजता से, क्योंकि कोई भी विघ्न का आने का कारण कोई ना कोई कमजोरी होती है। जीवन में अगर कोई भी विघ्न आता है तो उसका मुख्य कारण कहीं न कहीं कमजोरी का प्रयोग हो रहा है, इसलिए विघ्न क्रिएट होता है। जहां श्रीमत का प्रयोग होता है वहां विघ्न जीत बन जाते हैं, वहां विघ्न आ नहीं सकता है, न बंधन बन सकता है न विघ्न आ सकता है, दोनों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जहां कोई न कोई कमजोरी का प्रयोग हुआ वहां बंधन भी बनता है और विघ्न भी आता है, दोनों ही आते हैं। तो इसीलिए कहा श्रेष्ठ कर्मों का बल बहुत आवश्यक है आने वाले समय के लिए। आने वाले समय के लिए जितना इंसान के अपने पास श्रेष्ठ कर्म का बल होगा, उसको कोई भी हिला नहीं सकेगा। माया की भी ताकत नहीं है जो हिला सके उसको, है ना। बाबा ने आज कहा ना मुरली, माया कोशिश तो बहुत करती है लेकिन माया उसको हिला नहीं सकती है, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म का बल है उसके पास। तो ये तीसरा पहलू। और चौथा पहलू, कर्म योगी माना, योग युक्त होकर कर्म करना। और योग युक्त किसको कहा जाए? योग युक्त, युक्ति युक्त कहो, योग युक्त कहो, अर्थात दिव्य बुद्धि युक्त, जहां दिव्य बुद्धि का प्रयोग हो रहा हो, डिवाइन इंटेलेक्ट, जिसमें विवेक समाया हुआ हो, ऐसे दिव्य युक्त बुद्धि का प्रयोग जहां है उसको कहते हैं योग युक्त। दादी जानकी हमेशा ये बात बताती थी, बुद्धि के प्रकार, एक है आसुरी बुद्धि, एक है पत्थर बुद्धि, एक है भैंस बुद्धि, एक है बंदर बुद्धि और एक है दिव्य बुद्धि। दादी हमेशा, दादी की ये स्टाइल थी कि बुद्धि के प्रकार दादी हमेशा वर्णन करती थी। तो पत्थर बुद्धि किसको कहा? जो जड़ता। भैंस बुद्धि किसको कहा? मोटी बुद्धि को। बंदर बुद्धि माना चंचल बुद्धि, स्थिरता नहीं है, है ना। आसुरी बुद्धि माना कोई ना कोई विकारों के वशीभूत है। और दिव्य बुद्धि, दिव्य बुद्धि का वरदान भगवान ने हमें दिया है। जन्मते ही, ब्राह्मण जन्म लेते ही हम सभी को दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है। तो जो हर वक्त अपनी दिव्य बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, अर्थात ज्ञान युक्त बुद्धि हो जिसकी, वो ज्ञान युक्त बुद्धि का प्रयोग करता है। जो चीजें ये आंखें न देख सके वो दिव्य बुद्धि के चक्षु से देख सके, आदि मध्य अंतरिकाल दर्शी स्थिति पर स्थित होकर के, वो है दिव्य बुद्धि। तीनों कालों को बहुत अच्छे से स्पष्ट देखते हुए और फिर उसका प्रयोग करें या फिर उस कर्म में आए, ये है यथार्थ कर्मयोगी। वो योग युक्त होकर, युक्ति युक्त होकर के चलते हैं। आज की दुनिया के अंदर, ब्राह्मणों की दुनिया में भी झूठ बोल करके कई लोग कहते हम तो युक्ति युक्त बोल रहे हैं। उसको युक्ति युक्त कभी नहीं कहा जाता है। ये बात हम स्पष्ट समझ ले कि युक्ति युक्त का मतलब झूठ बोलना, ये युक्ति युक्त कभी नहीं हुआ। लेकिन युक्ति युक्त उसको कहा जाता है दिव्य बुद्धि युक्त। और उस दिव्य बुद्धि के आगे किसी और का क्वेश्चन उठ नहीं सकता है। लेकिन उस बात को वो भी सहजता से स्वीकार कर लेता है कि नहीं, ये राइट है, यथार्थ है, यही यथार्थ है। उसको कहा जाता है युक्ति युक्त, है ना। जैसे वो स्वामी विवेकानंद की बात में बताते हैं कि भाई लोगों ने इंसल्ट करना चाहा और गीता को नीचे रखा, और उसने दिव्य बुद्धि का प्रयोग करते हुए कहा आपने तो गीता को फाउंडेशन बना दिया, इतना सम्मान दे दिया, माना सारी सिचुएशन को जो चेंज कर सके, ये है दिव्य बुद्धि। कि उसके बाद लोगों का कैसे कहने की भी जरूरत ना पड़े, स्वीकार करना ही पड़ता है, यही यथार्थ है, ये है दिव्य बुद्धि युक्त। तो बाबा ने भी जब हमें दिव्य बुद्धि का वरदान दिया, वहां झूठ का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन वो दिव्य बुद्धि को इस तरह से प्रयोग करे कि सिचुएशन को चेंज कर दे, और जिस सिचुएशन के लिए हर कोई कहे हाँ ये यथार्थ है, इसके सिवाय और कुछ हो ही नहीं सकता है, है ना? जैसे कई बार ब्राह्मण मीटिंग के समय हम लोग देखते थे, जब मीटिंग होती थी और मीटिंग में कभी दो मत हो जाती है, नेचुरल है, इंसान है, दो मत तो हो ही जाएगी, और उस समय जब ये कहते थे अच्छा बाबा जो कहे, अब अक्सर ये होता था बाबा कौन सी मत को स्वीकार कर, लेकिन बाबा ऐसी कोई बात बता देता था जो हर कोई ये कहते थे नहीं यही यथार्थ है, न ये राइट है न ये राइट है, लेकिन और ये कोई बात, क्योंकि बाबा तो दिव्य बुद्धि विधाता है ना, और सारी मीटिंग एक्सेप्ट कर ले उस बात को, ये है दिव्य बुद्धि। तो इसी तरह दिव्य बुद्धि का वरदान बाबा ने हम बच्चों को भी दिया है, अर्थात के आदि मध्य अंत को इतना स्पष्ट रीति से हम देख सके, समझ सके, और उसके माध्यम से हम कोई भी बात करे या कोई भी कर्म करे, तो वह है योगयुक्त युक्तियुक्त। दूसरा, योगयुक्त का मतलब है एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में स्थित होकर के कर्म करना, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, सकारात्मक मनस्थिति में जब स्थित होकर के हम कोई कर्म करते हैं उसको कहते हैं योगयुक्त होकर कर्म करना। तीसरा, जिस कर्म को करने में आनंद का अनुभव हो, दिव्य आनंद, स्थूल आनंद नहीं, दिव्य आनंद, जहां मन इतना आनंदित हो जाए, और हमारा अपना मन नहीं, सबका मन आनंदित हो जाए उस कर्म से, वाह वाह जैसे निकलने लगे, जैसे बाबा कहते हैं ना वाह बच्चे वाह, ऐसे हर कोई कहे वाह 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 के गीत कहे, मन आनंदित हो जाए जिस कर्म से, उसको कहते हैं योगयुक्त कर्म, जिसमें सबकी प्रसन्नता समाई हुई, ये है यथार्थ कर्म योगी। अगर प्रसन्नता नहीं है हर आत्मा की तो वो कर्म योगी स्थिति नहीं है। और चौथी बात, कि जहां योगयुक्त होकर के जब कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म यादगार बन जाता है, अनेकों के लिए प्रेरणा बन जाती है, जिस प्रेरणा को फॉलो करे, जिस प्रेरणा को जीवन के अंदर ऐसे शामिल कर ले कि हाँ ऐसे कर्म हम भी अपने जीवन में करें, तो जिसका हर कर्म यादगार बन जाए वो है योगयुक्त कर्म। जैसे ब्रह्मा बाबा के हर कर्म यादगार, ब्रह्मा बाबा का चलना भी यादगार है, कई जब कहते हैं कि बाबा लास्ट दिनों में चलते थे तो ऐसा लगता था एक बादल चला गया, इतना हल्कापन महसूस होता था देखने वाले को भी। बड़ी दादी हमेशा कहती थी कि अंतिम दिनों में बाबा के लास्ट डे बोले, जब मैं बाबा का हाथ पकड़कर बाबा मुझे सब दिखा रहा था, भंडारा, फिर स्टोर रूम, यहाँ इतना ये चीज रखी है, एक एक चीज जैसे बाबा हाथ पकड़ करके मुझे ले जा रहा था, तो बाबा का हाथ ऐसा लगा था जैसे रुई है जिसमें हड्डी ही नहीं है, ये महसूस होता था। तो एक एक बात का जैसे वर्णन करते थे दादियां, तो बाबा का एक एक कर्म यादगार, आज बाबा ने जैसे कहा, कोई भी आएगा बाबा नहीं समझाएगा क्या? बहुत अच्छा समझा सकता है, लेकिन बाबा कहेगा ये मेरा काम नहीं है, बच्चों का काम है उनको समझाना। बाबा ने हमेशा बच्चों को आगे किया, दूसरों को आगे करना, ये है उस कर्म का यादगार, है ना? जैसे दादी के लिए हमेशा हम सभी कहते हैं कि दादी हमेशा हर एक की विशेषता को देख करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करती थी। कभी दादी के मन में ये नहीं होता था ये मैं ही करूं, नहीं, हर कोई। मुझे याद आता है कि जब SML शुरू हुआ और ट्रेनिंग करके, बस हम लोग ने अभी ट्रेनिंग करी, चली रही थी, और उतने में गोदरेज का वाइस प्रेसिडेंट आया था यहाँ पर। दादी मिल रही थी उनको, जैसे सौगात देना, मिलना, तो मिल रही थी। तो जैसे ही दादी मिलने लगी तो दादी ने फौरन उसको कहा, हमारे पास है ना SML की ट्रेनिंग चल रही है, अभी तो शुरू ही हुई है, ट्रेनिंग चल रही है, हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इतने में ही दादी ने उसको सुना दिया कि हमारे पास है ना SML की ट्रेनिंग चल रही है। वो भाई ने पूछा SML क्या होता है, तो दादी ने कहा ये सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप। लेकिन फिर भी दादी को कंफर्म नहीं था, तो दादी ने कहा एक मिनट, एक मिनट। फिर किसी को कहा, उषा कहाँ है, बुलाओ उसको, बुलाओ उसको। फिर दादी ने बुला करके कहा, जैसे ही मैं आए, वो ट्रेनिंग में क्या कर रहे, सुनाओ सुनाओ, है ना? अब मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं हूं, और दादी कहे नहीं सुनाओ ना, तुम क्या ट्रेनिंग कर रही है, क्या करा रहे हैं। तो ये नहीं कि मैं ये सब कुछ सुना दूं, लेकिन दादी हमेशा। और फिर दादी ने उस भाई को कहा, वाइस प्रेसिडेंट को कहा, ऐसा है आप ये ट्रेनिंग अपनी कंपनी में रखो, हमारी ये बहन आएगी। मैंने कहा दादी अभी मैं तैयार नहीं हूँ, ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं चौथे दिन आऊंगी, 3 दिन कराना, चौथे दिन मैं पहुंचूंगी। और रातों रात मैंने सारी नोट्स, क्योंकि इतना ध्यान से हमने नहीं किया था, लेकिन चलो ड्रामा कहो, कैसे ड्रामा पुरुषार्थ कराता है, मेहनत कराता है। तो जैसे ही अभी ट्रेनिंग चल रही है, अभी पूरी होने वाली है, और दादी ने प्रोग्राम भी ले लिया और तुम जाओ कराओ, और मैं आती हूँ, दादी मेरे पास कोई स्लाइड नहीं है, कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, तुम हाथ से लिख के करना ना, उसके ऊपर, वो कागज के ऊपर लिख के करना, कोई बात नहीं। इतना आगे बढ़ाना दूसरों को, आज अगर इस फील्ड में आगे बढ़ी मैं, कि जो नाम जोड़ा, कहा कि SML नाम जुड़ गया साथ में, उसका पूरा श्रेय दादी को जाता है। जो कोई आता था, जो कोई समझा कि ये कंपनी वाला है, बस कंपनी वाला है, शुगर फैक्ट्री वाला है, हमारी बहन SML कराती है। इतना बढ़ाया मुझे आगे हर जगह कि माना वो चीज जैसे मेरे नस नस में घुसना शुरू हो गई। आज हम अपनी ही छोटी बहनों को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए कहा हर कर्म यादगार बन जाए, जहां हर कर्म यादगार बन जाए उसको कहते हैं योगयुक्त कर्म। ये है योगयुक्त कर्म। तो इसीलिए कहा कि जहां हर कर्म, यही नहीं कि मैं ही बढ़ूं, हर एक को बढ़ाओ। और ये चीज कोई भी संस्था में नहीं है। चन्ना रेड्डी जब आया था तो उसने यही कहा, क्योंकि वो पुट्टपर्थी साई बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। यहां आने के बाद उसने यही चीज महसूस किया, क्योंकि कोर्स हम कराने जाते थे। अच्छा, यहां जब आता था मोहिनी बहन मिलते थे उसको, तो हर एक में जो ज्ञान उसने देखा, ज्ञान का भंडार देखा, तब उसने जाकर के साई बाबा को कहा। ये बात उसने कहा हम लोगों को, मैंने साई बाबा को सुनाया, तुम्हारे बाद कौन? ब्रह्मा कुमारी के पास जाके सीखो, उसके पास हजारों बहने संस्था को चलाने के लिए तैयार है, इतने लोगों को तैयार किया है, और तुम्हारे बाद कौन? उसने ये सवाल पूछा क्योंकि बहुत बड़ा भक्त था वो उसका, और वो भी उसका इतना सम्मान करता था। इतना बड़ा व्यक्ति है तो उसका सम्मान तो करेगा ही, और इसीलिए उसने कहा कि मैं देख करके आया हूं कि वहां एक ब्रह्मा कुमारी नहीं है, एक दादी नहीं है, लेकिन हजारों दादियां कहो, दीदियां कहो, खड़ी है तैयार, लेकिन यहां एक साईं बाबा के पीछे दूसरा साईं बाबा कोई नहीं है। ये चीज कोई भी संस्था में नहीं है, जो बाबा ने यहां पर हर एक के अंदर ये कर्म योगी बनने की विशेषता भरी है ना। कल बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही, कल नहीं परसों थी शायद, कि बहने हैं नदियां और भाई है सरोवर। तो मैं ब्रिजमोहन भाई से चिट चैट कर रही थी, ब्रिजमोहन भाई को तो आप सभी जानते हैं, तो मैंने ऐसे ही भाई साहब को कहा कि बाबा ने आज भाइयों को सरोवर कह दिया और बहनों को नदियां कह दिया। मैं तो भाई साहब से कुछ निकालना ही चाहती थी, तो भाई साहब ने कहा एक होता है बहाव, एक होता है ठहराव। तो मुझे भी हंसी आई, लेकिन भाई साहब ने इतनी अच्छी बात बताई, दोनों की विशेषताएं बताते हुए कहा, क्योंकि अक्सर ठहराव माना कि जहां गंदगी हो, ठहराव में गंदगी आ जाती है। तो मैंने कहा ये क्या कह दिया भाई साहब आपने, तो कहा नहीं, बोले एक बार कुएं की नदी के साथ लड़ाई हो गई, तो नदी ने मजाक मजाक में कह दिया, अरे एक कुआ, मैं देखो बहती रहती हूं और तुम तो ठहराओ, गंदगी तेरे में इकट्ठी होती जाती है। तो कुएं ने कहा ए नदी, तू बहती है ना तो ऊपर से नीचे जाती है, और मैं हूं ना नीचे से ऊपर आता हूं। समझा भावार्थ? समझा भाई लोग? नीचे से ऊपर आते हैं और बहने बहते बहते फिर भाई बहनों की भी विशेषता बताते हुए बहुत अच्छी, मतलब चिटचैट आधा घंटा बहुत अच्छी चली। कहा कि ये एक बहुत सुंदर कविता किसी ने लिखी और मेरे पास भेजी, तो कविता भी सुनाने लगे ठहराव और बहाव का लेकर के। लेकिन उसके बाद कहा कि देखो, गंगा को कहा ही जाता है पतित पावनी, या जितनी भी नदियां हैं उसको पतित पावनी कहा, तो शिव बाबा के नाम का या शिव बाबा की विशेषता उसके साथ जुड़ी हुई है, और इसीलिए सागर और नदी का जहां मेला है ना, गंगा सागर जिसको कहा गया, तो वो मेला भी वहीं लगता है। लेकिन मानसरोवर में जिसने डुबकी लगाई वो परियां बन गई। मैंने बहुत अच्छी चिटचैट हुई, मैंने कहा ये तो एक डिबेट रखनी चाहिए, बहुत अच्छी डिबेट हो जाएगी नदियां और सरोवर के नाम से, बहुत अच्छी ये हो जाएगी। है दोनों ही कर्मयोगी है ना, है दोनों ही कर्मयोगी, नदियां भी कर्मयोगी है तो सरोवर भी कर्मयोगी, वो वहां रह करके लोगों को परियां बनाता है और वो बहते बहते कईयों को परियां बना देती है ना, पावन बना देती है। तो इसीलिए दोनों की अपनी महानता है, अपनी विशेषता है, लेकिन यही कहा कि योग युक्त माना, किसी को कम आंकना नहीं, किसी को कम आंकना नहीं, योग युक्त माना सभी को इक्वल महत्व देना। अगर नहीं है तो महत्व दे करके उसको महत्वपूर्ण कार्य के लिए निमित्त बनाना, ये अपना कर्तव्य है। तो ऐसे जो कर्म योगी बनता है वो हर प्रकार के बंधन से विघ्नों से मुक्त हो जाता, अपना जमा का खाता बहुत अच्छा बढ़ाता है, अपना हर कर्म यादगार बना देता है और हर रीति से कर्मातीत स्थिति की ओर सहज अग्रसर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।